नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ताइवान ने सोमवार को कहा कि 24 घंटे की अवधि में चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने उसकी तरफ उड़ान भरी। ये हाल ही के वर्षों में चीन द्वारा एक दिन में ताइवान की तरफ भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों की सर्वाधिक संख्या है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सोमवार सुबह समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 103 चीनी लड़ाकू विमानों के द्वीप की तरफ उड़ान भरने का पता लगाया। मंत्रालय के मुताबिक चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही लौट गए। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा जताता है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप के आसपास हवा और पानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसे कुछ देश उकसावे भरी कार्रवाई के रूप में देखते हैं। अमेरिका ताइवान का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है और वो ताइवान की स्थिति को बलपूर्वक बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रविवार सुबह से सोमवार तड़के के बीच द्वीप की तरफ उड़ान भरने वाले 40 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच प्रतीकात्मक मध्य रेखा को पार किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर के लेनासिया उपनगर में रविवार को वार्षिक गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 में प्रस्तावित गांधी वॉक से लगभग एक महीने पहले कोविड महामारी की दस्तक के मद्देनज़र गांधी वॉक समिति ने इस पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया था। खबरों के मुताबिक 2020 में गांधी वॉक के दो प्रारूप आयोजित करने की योजना थी, जिसमें धावकों के लिए 15 किलोमीटर जबकि आम लोग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शामिल थी। खबरों के अनुसार 2020 में प्रस्तावित गांधी वॉक से जुड़ी तैयारियों पर बड़ी धनराशि खर्च हुई थी और लगभग 4000 लोगों ने इसमें हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया था। उत्तर पश्चिमी कांगो में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन होने के कारण रविवार देर रात कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या में इजाफे की आशंका जताई है, क्योंकि बचाव दल ढह चुके घरों के मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। नागरिक संस्था फोर्सेज वाइव्स के अध्यक्ष मैथ्यू मोल के अनुसार भूस्खलन कांगो नदी के किनारे उत्तर पश्चिमी मोंगाला प्रांत के लिसल शहर में हुआ और पहाड़ की तलहटी में बने घरों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। मोल ने कहा, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से बहुत नुकसान हुआ है। भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हो गए हैं, कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं। ऐसे में मृतकों की वास्तविक संख्या का अनुमान लगा पाना मुश्किल है। गवर्नर सीजर लिम्बाया मम्बागिसा ने कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाने और जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए मशीनरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और पूरे प्रांत में 3 दिन के शोक की घोषणा की। H-1B वीज़ा कार्यक्रम को अनुबंधित दास्ता करार देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने लॉटरी आधारित प्रणाली को ख़त्म करने का संकल्प लेते हुए कहा कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस व्यवस्था में बदलाव करेंगे। IT पेशेवरों के बीच बहुप्रतीक्षित H-1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं। रामास्वामी ने भी 29 बार वीज़ा कार्यक्रम का इस्तेमाल किया है। वर्ष 2018 से 2023 तक अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने H-1B वीज़ा के तहत कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए रामास्वामी की पूर्व कंपनी रोयवंत साइंसेस के 29 आवेदनों को मंजूरी दी। अखबार पॉलिटिको ने रामास्वामी के हवाले से कहा कि फिर भी H-1B प्रणाली इसमें शामिल सभी लोगों के लिए खराब है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मजबूती से एकजुट होगा, क्योंकि वो इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक नेताओं के साथ इस मुद्दे को उठाने पर जोर दे रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन तथा उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी स्थलों का दौरा करने के लिए पिछले सप्ताह रूस की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद से रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि किम दक्षिण कोरिया और अमेरिका को निशाना बनाने वाले अपने हथियार प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए आर्थिक सहायता तथा प्रौद्योगिकियों के बदले रूस के गोला बारूद के भंडार को फिर से भर सकते हैं, जो यूक्रेन के साथ पिछले 18 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान खत्म हो गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस की 6 दिन की यात्रा के बाद रविवार को स्वदेश रवाना हो गए। किम ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया। उनकी इस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने चिंता जाहिर की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बीच मॉस्को को उत्तर कोरिया से हथियार मिल सकते हैं, जिससे युद्ध में तेजी आ सकती है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि किम को आर्तियोम में एक रेलवे स्टेशन पर विदाई दी गई। इसके बाद उनकी बख्तरबंद ट्रेन रूसी देशभक्ति गीत फेयरवेले ऑफ सलावियांका की धुन के बीच उत्तर कोरिया के लिए रवाना हो गई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iGenSatta.com पर नमस्कार।